एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय के गहराई में जा रहे हैं जो हम सबकी सेहत, जेब और जिंदगी सबसे जुड़ा हुआ है।
हाँ, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा।
बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की फीस हो या दवाइयों का खर्चा, सरकारी अस्पतालों की हालत या फिर वो बीमा पॉलिसी की शर्तें।
ओफ हाँ, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।
पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? मतलब क्यों ये हेल्थ केयर बाकी चीजों की तरह काम नहीं करता?
और देखिए, यहीं पर आती है जेरेमिया हर्ले की किताब हेल्थ इकोनॉमिक्स। ये किताब हमें एक तरह से वो चश्मा पहनाती है जिससे हम स्वास्थ्य सेवा की इस जटिल दुनिया को एक आर्थिक नजरिए से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
हाँ, ये समझने में मदद करती है कि क्यों एक सेब खरीदना और एक सर्जरी करवाना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है।
न सिर्फ मेडिकल लिहाज से बल्कि आर्थिक लिहाज से भी।
बिल्कुल, और आज के समय में तो ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। नई नई बीमारियां आ रही हैं, इलाज महंगे होते जा रहे हैं,
और अच्छी स्वास्थ्य सेवा सब तक पहुंचाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो चलिए आज इसी किताब के जरिए हेल्थ केयर के अर्थशास्त्र को थोड़ा थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं।
हाँ बिल्कुल, लेकिन शुरू करने से पहले जरा लेखक के बारे में जान ले। ये जेरेमिया हर्ले हैं कौन, मतलब क्यों इनकी किताब इतनी अहम है?
देखिए, जेरेमिया हर्ले कनाडा के एक काफी जाने माने हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब स्वास्थ्य अर्थशास्त्री।
अच्छा।
वो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं
और उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक, मतलब 20 साल से ज्यादा, इसी फील्ड में रिसर्च करने और पढ़ाने में लगाए हैं। तो क्या वो सिर्फ किताबी कीड़ा टाइप प्रोफेसर है या उनका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है, जमीनी हकीकत से वास्ता?
नहीं, यही तो खास बात है। हर्ले सिर्फ एक शिक्षाविद नहीं है, उन्होंने असल दुनिया में, मतलब पॉलिसी मेकिंग में सलाहकार के तौर पर भी काम किया है।
अच्छा, ये तो बढ़िया है।
हाँ, तो वो जानते हैं कि ये जो आर्थिक सिद्धांत हैं, ये कागज पर कैसे दिखते हैं और असल जिंदगी में अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों में इनका क्या होता है। उन्होंने कनाडा जैसे देशों के हेल्थ सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, समझा है, जहाँ सरकार का रोल काफी बड़ा है।
तो मतलब वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बीच एक पुल बनाते हैं।
बिल्कुल, सिद्धांत और व्यवहार दोनों को जोड़ते हैं।
ये उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए वाकई एक सही आवाज बनाता है। चलिए अब आते हैं किताब पर। ये किताब आखिर है किस बारे में, इसका मेन मकसद क्या है?
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किताब हेल्थ इकोनॉमिक्स की दुनिया का एक तरह से गाइड है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के छात्रों के लिए नहीं है, ये डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी बनाने वाले लोग
और हम जैसे आम लोग भी।
हाँ बिल्कुल, जो भी ये समझना चाहता है कि ये पूरा हेल्थ केयर सिस्टम काम कैसे करता है, उनके लिए है। इसका मूल उद्देश्य है आर्थिक सिद्धांतों को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा पर लागू करना सिखाना, ताकि सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके।
और इसका क्या कहते हैं, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, मुख्य तर्क क्या है किताब का?
हर्ले का मुख्य तर्क ये है कि हेल्थ केयर का बाजार वो मौलिक रूप से अलग है, ये कोई आम बाजार नहीं है। इसे आप सब्जी मंडी या शेयर बाजार की तरह नहीं समझ सकते, इसकी अपनी अनोखी पेचीदगियां हैं।
क्या है वो पेचीदगियां, मतलब क्या खास है इसमें?
हर्ले कई बातों पर जोर देते हैं। एक है सूचना की विषमता या इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री।
अच्छा, वो डॉक्टर मरीज वाला गैप।
हाँ बिल्कुल, सोचिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें आपकी बीमारी और इलाज के बारे में आपसे कहीं कहीं ज्यादा पता होता है, आप काफी हद तक उनकी सलाह पर निर्भर होते हैं।
सही बात है, गाड़ी खरीदने जैसा नहीं है ये।
बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है अनिश्चितता, हमें नहीं पता कि हम कब बीमार पड़ेंगे, इलाज पर कितना खर्च आएगा, कोई गारंटी नहीं है।
हाँ ये तो है।
और तीसरी अहम बात है बाहरी प्रभाव, एक्सटर्नैलिटीज। जैसे अगर आप टीका लगवाते हैं तो उसका फायदा सिर्फ आपको नहीं मिलता।
हाँ, दूसरों को भी मिलता है क्योंकि बीमारी नहीं फैलती।
एग्जैक्टली, तो इन सब वजहों से हर्ले कहते हैं हेल्थ केयर में सरकार या किसी न किसी रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, बाजार अपने आप सब ठीक नहीं कर पाता, अक्सर फेल हो जाता है।
ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है, मतलब क्योंकि हेल्थ केयर इतना अलग है, इसमें इतनी खास बातें हैं, इसलिए इसके लिए नियम, कायदे और सिस्टम भी अलग तरह से सोचने पड़ते हैं।
हाँ,
और यही पर इकोनॉमिक्स हमारी मदद करती है ना?
बिल्कुल, किताब यही समझाती है कि कैसे ये आर्थिक सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि लोग हेल्थ केयर का इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं, डॉक्टर और अस्पताल कैसे फैसले लेते हैं, बीमा कंपनियां कैसे काम करती हैं।
और इस समझ से हम बेहतर नीतियां बना सकते हैं।
हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके, लागत, पहुंच, गुणवत्ता, इन सब चुनौतियों से निपटा जा सके। चलिए अब किताब के कुछ और गहरे विचारों में उतरते हैं। हर्ले शुरुआत में ही ये बात मजबूती से रखते हैं कि स्वास्थ्य सेवा क्यों खास है। यही वो मार्केट फेलियर यानी बाजार की विफलता की बात करते हैं।
हाँ, और ये बाजार की विफलता वही चीजें हैं जिनका जिक्र हमने अभी किया है ना? जैसे अनिश्चितता, कब बीमार पड़ जाएं पता नहीं,
हाँ
सूचना का गैप, डॉक्टर साहब सब जानते हैं हमें कम पता है, बाहरी प्रभाव।
बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ा पहलू है, समानता, इक्विटी का सवाल।
हाँ, ये बहुत अहम है। क्या जिंदगी बचाने वाला इलाज सिर्फ पैसे वालों को मिलना चाहिए? ज्यादातर समाज मानते हैं कि नहीं, स्वास्थ्य सेवा सिर्फ एक बिकाऊ चीज नहीं है, ये जरूरत है, शायद अधिकार भी।
सही कहा। इसी वजह से सरकारें बीच में आती हैं, हस्तक्षेप करती हैं। इसके बाद किताब एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर आती है, ग्रॉसमैन मॉडल।
ग्रॉसमैन मॉडल, ये क्या है?
माइकल ग्रॉसमैन एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हमें स्वास्थ्य को एक पूंजी की तरह देखना चाहिए, हेल्थ कैपिटल।
पूंजी मतलब जैसे पैसा या प्रॉपर्टी?
हाँ, कुछ वैसा ही जैसे हम घर या गाड़ी में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले, वैसे ही हम अपने स्वास्थ्य में भी निवेश करते हैं।
अरे वाह, ये सोचने का एक अलग ही नजरिया है। मतलब अच्छा खाना, वर्जिश करना, रूटीन चेकअप करवाना,
हाँ
ये सिर्फ आदतें नहीं बल्कि अपनी स्वास्थ्य पूंजी में निवेश है, ताकि हम ज्यादा समय तक स्वस्थ रहकर काम कर सके, जिंदगी जी सके।
बिल्कुल। और जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी इसी पूंजी को ठीक करने या बचाने का एक तरीका है, उसे डेप्रिशिएट होने से बचाना। और यहीं से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग यानी डिमांड फॉर हेल्थ केयर निकलती है।
अच्छा, मतलब हम अस्पताल इसलिए नहीं जाते कि हमें वहां मजा आता है?
हाँ, कोई मजे के लिए नहीं जाता,
बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें अपनी स्वास्थ्य पूंजी वापस चाहिए, अपना स्वास्थ्य ठीक करना है।
सही पकड़ा। और किताब ये भी बताती है कि हमारी ये मांग किन चीजों पर निर्भर करती है, जैसे इलाज का खर्च कितना है, क्या हमारे पास बीमा है, हमारी आमदनी कितनी है, हमारी उम्र क्या है, ये सब फैक्टर्स।
ठीक है, मांग की बात हो गई, अब आते हैं आपूर्ति यानी सप्लाई पर। डॉक्टर, हस्पताल, दवा कंपनियां, इनका व्यवहार कैसे तय होता है?
यहां भी किताब कहती है प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव्स का बड़ा खेल है।
इंसेंटिव्स मतलब उन्हें किस बात के लिए पैसा या पहचान मिलती है?
इससे उनके काम करने का तरीका बदल जाता है। एक क्लासिक उदाहरण है डॉक्टरों को भुगतान करने के तरीके।
अच्छा, कैसे?
एक तरीका है फी फॉर सर्विस, मतलब डॉक्टर हर जांच, हर प्रक्रिया के लिए अलग से पैसा लेते हैं।
हाँ जी, तो कॉमन है।
अब ऐसे में क्या ये मुमकिन नहीं कि डॉक्टर ज्यादा जांचें या प्रक्रिया करवाने की सलाह दें, भले ही उनकी उतनी जरूरत ना हो, क्योंकि हर सर्विस से उनकी कमाई बढ़ती है।
हाँ, ये एक चिंता तो रहती है। इसे शायद डॉक्टर द्वारा प्रेरित मांग या फिजिशियन इंड्यूस्ड डिमांड भी कहते हैं।
बिल्कुल, ये एक विवादास्पद अवधारणा है, पर किताब इस पर चर्चा करती है।
और दूसरा तरीका क्या है?
एक और मॉडल है कैपिटेशन। यहाँ डॉक्टर को हर मरीज के हिसाब से एक फिक्स्ड सालाना रकम मिलती है, चाहे मरीज एक बार आए या 10 बार।
अच्छा, तो इसमें क्या इंसेंटिव है?
यहाँ डॉक्टर का जोर शायद बीमारी की रोकथाम पर और लागत कम रखने पर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर मरीज कम बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर का काम और खर्च कम होगा, लेकिन पैसे तो उतने ही मिलेंगे।
तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है।
बिल्कुल। और बात सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, अस्पताल कैसे चलते हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, चैरिटेबल हैं, उनके लक्ष्य और काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं।
और दवा कंपनियों का अर्थशास्त्र, वो तो और भी पेचीदा मामला है।
हाँ, नई दवा खोजने का भारी खर्च, वो R&D कॉस्ट, फिर पेटेंट से मिलने वाला एकाधिकार, और फिर दवाओं की कीमतें तय करना, ये सब हेल्थ केयर सिस्टम के बहुत अहम हिस्से हैं।
और एक चीज जो शायद पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, वो है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस।
हाँ, बीमा तो बहुत जरूरी है, ये हमें अचानक आने वाले बड़े मेडिकल खर्चों के जोखिम से बचाता है। लेकिन हर्ले बताते हैं कि बीमा अपने साथ दो बड़ी समस्याएं भी लाता है।
दो समस्याएं, कौन सी?
पहली है एडवर्स सिलेक्शन या प्रतिकूल चयन।
एडवर्स सिलेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले से बीमार हैं या जिन्हें लगता है कि वो ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, वो बीमा खरीदने में सबसे ज्यादा रुचि दिखाते हैं।
अच्छा, हाँ ये तो लॉजिकल है।
पर सोचिए, अगर सिर्फ बीमार लोग ही बीमा लेंगे तो बीमा कंपनी का खर्च बहुत बढ़ जाएगा।
हाँ, क्लेम ज्यादा आएंगे
तो उन्हें प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा, और जब प्रीमियम महंगा हो जाएगा तो जो स्वस्थ लोग हैं वो सोचेंगे कि हमें इतने महंगे बीमा की क्या जरूरत है, वो शायद बीमा ना लें।
अरे हाँ, इससे तो पूरा बीमा बाजार गड़बड़ा सकता है। या तो बीमा बहुत महंगा हो जाएगा, या कंपनियां सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही बीमा देना चाहेंगी।
एग्जैक्टली, ये एक बड़ी चुनौती है।
और दूसरी समस्या क्या बताई?
दूसरी समस्या है मॉरल हैजर्ड या नैतिक जोखिम।
मॉरल हैजर्ड, नैतिक जोखिम, ये सुनने में थोड़ा अजीब है।
हाँ, पर इसका मतलब सीधा सा है। जब हमें पता होता है कि बीमारी का ज्यादातर खर्च बीमा कंपनी उठाएगी, तो हम शायद सेहत को लेकर थोड़े लापरवाह हो जाएं।
अच्छा, जैसे?
मतलब शायद उतना ध्यान ना दें खान पान पर, या जरूरी सावधानी ना बरतें। और दूसरा पहलू ये है कि बीमार पड़ने पर हम जरूरत से ज्यादा महंगा इलाज या ज्यादा जांचें करवाएं, क्योंकि पैसा तो अपनी जेब से कम ही जा रहा है।
हाँ, ये बात तो है। इसे आप ऑल यू कैन ईट बुफे जैसा समझ सकते हैं। जब अनलिमिटेड खाना होता है तो हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
बिल्कुल सही उपमा है। किताब में अमेरिका में हुए एक बड़े एक्सपेरिमेंट का जिक्र है, रैंड हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेरिमेंट।
हाँ, क्या था उसमें?
उसमें यही देखा गया, जिन लोगों को इलाज के लिए अपनी जेब से कम पैसा देना पड़ रहा था, मतलब जिनका को पेमेंट कम था, उन्होंने ज्यादा मेडिकल सेवाओं का इस्तेमाल किया।
अच्छा।
लेकिन मजे की बात यह थी कि ज्यादातर मामलों में इस अतिरिक्त देखभाल से उनकी सेहत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
करती है अलग अलग देशों के हेल्थ सिस्टम्स की,
है ना? हाँ, स्वास्थ्य प्रणालियों की, और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए। जैसे ब्रिटेन का NHS है जो टैक्स के पैसे से चलता है,
जर्मनी में बीमा आधारित मॉडल है, कनाडा में सरकारी मुख्य बीमा करता है सिंगल पेयर,
और अमेरिका का सिस्टम तो बहुत ही मिलाजुला पेचीदा है। हर्ली बताते हैं कि इन सिस्टम्स की तुलना कैसे करें, उनके फायदे नुकसान क्या हैं। कोई एक बेस्ट सिस्टम नहीं है।
और मूल्यांकन कैसे करते हैं?
यहीं पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस जैसी तकनीकों की बात आती है। मतलब ये देखना कि किसी इलाज या प्रोग्राम पर खर्च किए गए पैसे से सेहत में कितना सुधार हो रहा है, वैल्यू फॉर मनी मिल रही है या नहीं। एक और कॉन्सेप्ट है QALY,
क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर।
QALY,
ये क्या है?
ये जीवन की लंबाई और गुणवत्ता दोनों को मिलाकर देखता है। आसान भाषा में, क्या एक साल ज्यादा जीना ज्यादा जरूरी है, या एक साल अच्छी सेहत के साथ जीना? ये मुश्किल सवाल है, पर नीतियां बनाते समय इन पर सोचना पड़ता है। किस चीज पर पैसा खर्च करें जिससे लोगों को सबसे ज्यादा क्वालिटी वाले साल मिले।
वाह, ये तो सच में हेल्थ केयर का पूरा एक्सरे जैसा है। अगर हमें इस पूरी बातचीत और किताब के निचोड़ को कुछ मुख्य संदेशों में बांधना हो तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है, हेल्थ केयर कोई आम चीज नहीं है, ये असाधारण है, एक्सेप्शनलिज्म।
हाँ, ये बाजार अलग है, इसकी समस्याएं अलग हैं, और इसके समाधान भी अलग होंगे। इसे किराने की दुकान की तरह नहीं चलाया जा सकता।
बिल्कुल नहीं।
सही।
दूसरा बड़ा सबक है, संसाधन सीमित हैं, इसलिए चुनाव करने पड़ेंगे, स्केर्सिटी एंड ट्रेड ऑफ्स।
हाँ, पैसा, डॉक्टर, अस्पताल के बिस्तर, सब कुछ सीमित है, इसलिए हमें हमेशा सोचना पड़ता है कि हम अपना पैसा और समय कहाँ लगाएं।
खर्च करें या बुनियादी जरूरतों जैसे साफ पानी और पोषण पर।
ये मुश्किल चुनाव है, और हर चुनाव का एक अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, यानी कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है।
बिल्कुल, हमें कुशलता, एफिशिएंसी और समानता, इक्विटी के बीच संतुलन साधना होता है। ये हमेशा एक तनाव बना रहता है।
तीसरा संदेश जो मुझे बहुत अहम लगा, प्रोत्साहन मायने रखते हैं, पावर ऑफ इंसेंटिव्स।
हाँ, ये बहुत पावरफुल है। डॉक्टर कैसे काम करते हैं, अस्पताल के असुविधाएं देते हैं, हम खुद अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं, ये सब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस चीज के लिए इनाम मिलता है या सजा मिलती है।
अगर हमें सिस्टम को सुधारना है तो हमें इन प्रोत्साहनों को समझना होगा और उन्हें सही दिशा देनी होगी। जैसे भारत में आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले प्रोत्साहन उनकी सेवाओं की डिलीवरी पर सीधा असर डालते हैं ना।
बिल्कुल। चौथा जो बार बार सामने आता है, जानकारी का असंतुलन एक हकीकत है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री इज रियल।
हाँ, डॉक्टर और मरीज के बीच ज्ञान का फासला बहुत बड़ा है, ये मरीज को एक तरह से कमजोर बनाता है
और सिस्टम में भरोसे और नियमों की जरूरत पैदा करता है। हमें ये मानकर चलना होगा कि मरीज को सुरक्षा की जरूरत है, उसे प्रोटेक्ट करना होगा।
और पांचवा, एक जरूरी सीख जो हमें यथार्थवादी बनाती है, कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम परफेक्ट नहीं है, नो परफेक्ट सिस्टम।
हाँ, हर देश का सिस्टम वहां के हालात, इतिहास और मूल्यों का नतीजा है। हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां।
हमें दूसरों से सीखना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नकल नहीं करनी चाहिए। हर समाधान के अपने समझौते, अपने ट्रेड ऑफ्स होते हैं।
किताब में कुछ ऐसे विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, मतलब आप उन पर बार बार सोचते हैं। जैसे हर्ली कहते हैं कि स्वास्थ्य सिर्फ एक और बिकाऊ चीज नहीं है।
हाँ, इसका गहरा मतलब है, ये सिर्फ खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, इसमें नैतिकता, जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय, ये सब पहलू जुड़े हैं। जीवन मृत्यु का सवाल है।
बिल्कुल। और एक और दमदार विचार, बीमा हेल्थ केयर में सब कुछ बदल देता है।
हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बीमा जरूरी है, लेकिन ये लोगों के व्यवहार, मॉरल हैजर्ड और बाजार की संरचना, एडवर्स सिलेक्शन को इस तरह बदलता है कि चीजें और जटिल हो जाती हैं।
बीमा के असर को समझे बिना हम हेल्थ केयर को नहीं समझ सकते, ये बात पक्की है।
ये भी याद रखने लायक है, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी का गैप नियम है, अपवाद नहीं।
हाँ, ये हमें बताता है कि क्यों मरीजों की सुरक्षा के लिए कानून, डॉक्टरों के लिए लाइसेंस और अस्पतालों के लिए मानक इतने जरूरी हैं, क्योंकि मरीज खुद सब कुछ नहीं जान सकता, ना जांच सकता।
और ये बात भी गौर करने वाली है, हम डॉक्टरों और अस्पतालों को कैसे भुगतान करते हैं, ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं, ये नीति बनाने का एक औजार है।
पेमेंट सिस्टम्स आर पॉलिसी टूल्स। बिल्कुल, पेमेंट का तरीका तय करता है कि किस तरह की देखभाल को बढ़ावा मिलेगा, क्या ज्यादा प्रोसीजर करने को या मरीज को स्वस्थ रखने को। ये बहुत शक्तिशाली तरीका है व्यवहार बदलने का।
और आखिर में वही बात जो हमें जमीन पर रखती है, कोई जादुई परफेक्ट हेल्थ सिस्टम नहीं होता, सिर्फ अलग अलग तरह के समझौते होते हैं।
हाँ, हर देश अपनी जरूरत और क्षमता के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है, अपने समझौते करता है।
ये सब सुनने में तो बहुत ज्ञानवर्धक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें कैसे काम आ सकती हैं?
देखिए, मेरे ख्याल से ये सिद्धांत हमें बेहतर उपभोक्ता और नागरिक बनने में मदद कर सकते हैं।
कैसे?
जैसे मॉरल हैजर्ड को समझना, ये हमें याद दिला सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। क्या ये टेस्ट वाकई जरूरी है? क्या कोई और सस्ता और उतना ही असरदार विकल्प है? हम शायद डॉक्टर से सही सवाल पूछने में कम हिचकिचाएंगे।
ये बात तो सही है। और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो,
तब भी हम सिर्फ प्रीमियम नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि डिडक्टेबल क्या है, कोपेमेंट कितना है, कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, कौन सी नहीं। एडवर्स सिलेक्शन को जानने से हमें समझ आएगा कि बीमा कंपनियां क्यों हमारी सेहत के बारे में इतने सारे सवाल पूछती हैं।
हाँ, तो हम ज्यादा जानकारी के साथ बेहतर फैसला ले पाएंगे।
बिल्कुल, और वो ग्रॉसमैन मॉडल वाली सोच भी काम किए।
हाँ, हेल्थ हैज कैपिटल।
ये हमें सेहत को एक निवेश की तरह देखने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा खाना, व्यायाम, पूरी नींद, ये खर्च नहीं है, ये हमारी स्वास्थ्य पूंजी में निवेश है। इसका रिटर्न हमें लंबे समय तक मिलता है, बेहतर सेहत, ज्यादा काम करने की क्षमता, बेहतर जिंदगी।
और एक नागरिक के तौर पर, जब टीवी पर या अखबार में स्वास्थ्य नीति पर बहस हो रही हो।
हाँ, तब भी, जैसे मान लीजिए भारत में आयुष्मान भारत योजना पर चर्चा हो रही है, तो हम सिर्फ नारों पर नहीं जाएंगे। इस सूचना का गैप कम होगा या बढ़ेगा, क्या इसमें दक्षता और समानता का सही संतुलन साधने की कोशिश की गई है, ये आर्थिक सिद्धांत हमें ज्यादा गहराई से, ज्यादा समझदारी से सोचने में मदद करते हैं।
और जो लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर, नर्स, प्रशासक, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक है।
हाँ, वो समझ सकते हैं कि सिस्टम के नियम और भुगतान के तरीके उनके काम को कैसे प्रभावित करते हैं, और वो इन दबावों के बीच रहते हुए भी मरीजों के लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला, मतलब फाइनल टेकअवे क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ केयर की गुत्थी सुलझाने के लिए इकोनॉमिक्स एक बहुत बहुत जरूरी औजार है। ये हमें भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्यों और तर्कों के आधार पर सोचने में मदद करता है। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसमें नैतिकता, सहानुभूति और सामाजिक मूल्य बहुत बहुत अहम है। इकोनॉमिक्स सब कुछ नहीं बता सकती।
सही कहा। और मेरे लिए सबसे अहम सीख ये रही कि कोई भी जवाब आसान नहीं है, हर नीति, हर फैसले में कुछ ना कुछ समझौते, कुछ ट्रेड ऑफ शामिल होते हैं।
हाँ,
सबको सब कुछ मिले, ये आदर्श सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर हकीकत में हमें चुनना पड़ता है, संसाधन सीमित हैं। हर्ले की किताब हमें इन्हीं चुनावों को समझने, उनके नफा नुकसान का अंदाजा लगाने और ज्यादा सोचे समझे फैसले लेने का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देती है।
ये हमें सतही बातों से आगे बढ़कर असली मुद्दों पर ध्यान देने में मदद करती है।
बिल्कुल, एक बहुत ही उपयोगी नजरिया देती है ये किताब।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए इग्राता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।